आवाजों की एक आवाज रिख्ता पॉडकास्ट।
हाजरीन आदाब, रिख्ता पॉडकास्ट के इस एपिसोड में आपका इस्तकबाल है। हाजरीन, जमाने भर में मशहूर मिर्जा गालिब अपने जमाने में एक रिजेक्टेड शायर थे। उनकी ज्यादातर शायरी फारसी में है, मगर शोहरत उर्दू शायर के तौर पर मिली। एक तो फारसी शायरी भी मुश्किल वाली और उस पर उनका रहस्यवाद। शेरों में कुछ चुटकी लाने के लिए गालिब अपनी शायरी में तरह तरह के तजर्बे करते, जिससे उनकी शायरी कई दफा और भी मुश्किल हो जाती थी। उनकी शायरी के बारे में आम ख्याल था कि महलों की शायरी है, जो हद दर्जे तक बेईमानी है। फारसी गालिब के खून में थी। उनके दादा मिर्जा कोबान बे खान अहमद शाह के ज़माने में समरकंद से भारत कोई 1750 ईस्वी में आए थे। उन्होंने दिल्ली, लाहौर और जयपुर में काम किया और अंत में आगरे में आकर बस गए। गालिब यहीं आगरे में कोई 50 साल बाद जन्मे। मिर्जा जब 14 साल के हुए तो उनकी मुलाकात एक ईरानी विद्वान अब्दुस समद से हुई। ये ईरानी साहब कभी पारसी हुआ करते थे, जो बाद में मुसलमान हो गए। अब्दुस समद फारसी के बहुत अच्छे जानकार थे। कहते हैं, इन ईरानी साहब ने गालिब को 2 साल तक फारसी शब्दों, व्याकरण और फारसी मुहावरों की तालीम दी। एक तो गालिब के जिस्म में दौड़ता ईरानी लहू और दिमाग में ईरानी उस्ताद की नसीहतें और तजर्बे, इन दोनों के मेल ने गालिब को फारसी का ज़बरदस्त और ज़हीन शायर बना दिया। सिर्फ शायर ही नहीं, बल्कि उनके खाने पीने, उठने बैठने, बात करने, कपड़े पहनने और सोचने समझने का अंदाज तक खालिस ईरानी हो गया। गालिब को बदनाम शायर कहा जाता था। अपने बारे में खुद उनके अल्फाज हैं, होगा कोई ऐसा भी जो गालिब को ना जाने, शायर तो वो अच्छा है पर बदनाम बहुत है। जरा गालिब के इस शेर पर गौर कीजिए। एक जा हरफे वफा लिखा था सो भी मिट गया, एक जा हरफे वफा लिखा था सो भी मिट गया, जाहिरन कागज तेरे खत का गलत बरदार है। गालिब ने यहां जगह की जगह फारसी का जा लफ्ज लिखा। गलत अरबी का शब्द है और बर्बाद फारसी का। फारसी में गलत बरदार उस चाकू को कहते हैं जिससे खुरच के गलत लिखे गए अक्षर मिटाए जाते हैं, लेकिन यहां उसका इस्तेमाल गालिब ने ऐसे कागज के लिए किया है जिसमें गलत लिखे गए अक्षर आसानी से मिटाए जा सकते हैं। गालिब कहते हैं कि एक जगह तुमने खत में वफा शब्द लिखा था, लेकिन वो मिट गया। शायद तुम्हारे खत का कागज गलत बरदार है, जिस पर दिल की सच्ची बातें नहीं लिखी जाती, वो खुद ब खुद मिट जाती हैं। तो जब तक आप गलत बरदार का मतलब नहीं समझेंगे, तब तक आप गालिब के इस खूबसूरत शेर को नहीं समझ सकते। इसके अलावा गालिब की शायरी का एक तीसरे दर्जे का भी अंदाज है, जो खालिस फारसी लफ्जों से लबरेज है। चश्म खूबा खामोशी में भी नवा परदाज है, सुरमा तो कहवे कि दूदे शोलाए आवाज है। अब फारसी समझने वाला कोई भी इस शेर पर वाह वाह किए बिना नहीं रहेगा, लेकिन उर्दू से मोहब्बत करने वाले आम हिंदुस्तानियों के लिए ये शेर बेमजा है। चश्म कहते हैं आंखों को, खूबा यानी खूबसूरत माशूका, नवा परदाज, इसमें नवा का मानी है बोलना और परदाज माने अंदाज, यानी माशूका के बोलने का अंदाज। दूध का मतलब है धुआं और शोला आप जानते ही हैं, आग की लपट को कहते हैं। तो शेर की व्याख्या यूं हुई, माशूका की आंखें खामोश रहकर भी कुछ कह जाती हैं, और उसकी आंखों का सुरमा या काजल कुछ और नहीं, बल्कि उसकी इसी अनबोली आवाज के धुएं से बना है। अब देखिए, इतना खूबसूरत शेर बिना फारसी जाने कैसे बेमजा हुआ जा रहा था। तो आप जानिए कि गालिब की पूरी शायरी में कोई 18,000 अशार ऐसे ही खालिस फारसी के हैं। मिर्जा के उर्दू दीवान में केवल 1800 शेर हैं, लेकिन सब एक से बढ़कर एक। और सच पूछिए तो इन्हीं शेरों से गालिब की पहचान भी बनी है। और इन शेरों के बारे में कभी गालिब ने बड़ी हिकारत से कहा कि ये शेर उन्होंने अपने कम फारसी समझने वाले दोस्तों के तफरी के लिए लिखकर उन्हें बांट दिए थे। वो कहते थे, अगर आपको मेरे अशार का रंग देखना है तो मेरी फारसी शायरी पढ़िए। ईरान और अरब में तो गालिब की शायरी की धूम इन्हीं गजलों, रुबाइयों और शेरों की वजह से है। हम हिंदुस्तानी तो गालिब के इन्हीं 1800 शेरों पर निहाल हैं। गालिब एक अरबी लफ्ज है जिसका मतलब है सब पर छा जाने वाला विजेता। गालिब का एक मतलब और है, एक ऐसा पेड़ जो आसमान के पेड़ में सबसे ऊंचा हो। सच तो ये है कि गालिब ने उर्दू शायरी में अपने लिए सबसे ऊंचा स्थान बना लिया। वो कंटेंट को सीधी सादी जबान में कहने के बजाय उसे तसव्वुर की अंधेरी भूल भुलैया में डाल देते हैं, फिर किसी जादूगर की तरह उसकी नुमाइश करते हैं। इसे आप नज़रों का धोखा कहें या हाथ की सफाई, पर यह हुनर गालिब में था। कभी कभी तो ऐसा होता है कि गालिब की कल्पना की उड़ान इतनी ऊंची चली जाती है कि आसमान में तकरीबन गुम हो जाती। गालिब की शायरी में कई रंग हैं। एक ही गजल में कुछ शेर इश्क और मोहब्बत के हैं, कुछ फिलॉसफी के हैं, तो कुछ जिंदगी के दूसरे मिजाज के। इन अशार में फारसी लफ्ज ठुसे पड़े हैं। अगर आप फारसी लफ्जों से परिचित हैं तो गालिब के शेर आपका दिल जीत लेंगे, नहीं तो आप केवल मायूस होकर रह जाएंगे। मसलन, गुंचाए ना शगुफ्ता को दूर से मत दिखा कि यूं, गुंचाए ना शगुफ्ता को दूर से मत दिखा कि यूं, बोसे को पूछता हूं मैं मुंह से मुझे बता कि यूं। गुंचा के माने कली, ना शगुफ्ता यानी जो अभी खिली नहीं है, और बोसा यानी चूमना। इस शेर में तीन लफ्ज फारसी के हैं, बाकी हिंदी के शब्द हैं। गालिब कहते हैं कि जब मैंने अपनी माशूखा से पूछा कि चुंबन कैसे लिया जाता है, तो उसने अध खिली कली की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यूं। माशूखा के इस अंदाज पर फिदा शायर कहता है, मैं ये सब नहीं समझता, मुझे अपने मुंह से चूम के बताओ कि यूं। फिर वो आगे लिखते हैं, पुरसिशे तर्जे दिलबरी कीजिए क्या कि बिन कहे, पुरसिशे तर्जे दिलबरी कीजिए क्या कि बिन कहे, उसके हर एक इशारे से निकले है ये अदा कि यूं। उनसे पुरसिशे तर्ज यानी किस ढंग से पूछें कि दिल किस तरह लूट लिया जाता है, बिना उसके कहे उसके हर एक इशारे से उसका जवाब मिल गया कि यूं। आगे गालिब लिखते हैं, गैर से रात क्या बनी ये जो कहा तो देखिए, गैर से रात क्या बनी ये जो कहा तो देखिए, सामने आन बैठना और ये देखना कि यूं। यानी मैंने उससे पूछा कि रात को गैर से क्या बातें हुई, कैसे बातें हुई, उसने कहा कि देखिए और मेरे सामने आकर बैठ गई। वो बताना चाह रही है कि मैं उस गैर के साथ भी ऐसे दूरी बनाकर बैठी थी। तो ये गालिब साहब की बात करने का एक रोमांटिक अंदाज है। इस तरह गालिब अपने हर शेर में फारसी के कठिन लफ्ज रखते हैं जो आमतौर पर चलन में नहीं होते थे, लेकिन उन लफ्जों में कभी शरारत होती है तो कभी समंदर की गहराई। गालिब फारसी जुबान के उस्ताद थे। उनका मुकाबला हिंदुस्तान और ईरान के शायर खुसरो, नज़ीरी, फैजी, बेदिल से किया जाता था। वो खुद अपनी उर्दू शायरी को कुछ नहीं समझते थे। एक शेर में उन्होंने कहा भी है कि अगर कई तरह के रंग देखना चाहते हो तो मेरे फारसी शेर देखो, मेरी उर्दू शायरी को छोड़ो, उसमें मुझे कोई रंग नहीं दिखता। गालिब, ज़ौक, मोमिन, ज़फ़र, ये चारों एक ही दौर के शायर थे, चारों बेहतरीन शायर, लेकिन गालिब इनमें सबसे ज़्यादा मशहूर हुए। गालिब और मोमिन दोनों फारसी शायरी के मास्टर थे। दोनों की शायरी में फारसी शब्दों और फारसी मुहावरों की भरमार है, इसलिए दोनों खुद को एक दूसरे से कमतर नहीं समझते थे। दोनों में एक होड़ रहती थी कि वो अपने शेरों में फारसी के कितने शब्द और मुहावरे डालते हैं। इस चक्कर में उनकी शायरी बेरूह हो गई। पहली नज़र में वो केवल फारसी लफ्ज़ों के समूह होते थे, बस उनके माने निकालने की जहमत कोई नहीं करता था। चंद गिने चुने फारसीदां लोग उस पर तबसरा करते, वो भी इन फारसी शायरों को नीचा दिखाने के लिए। गालिब के शेरों पर खूब नुक्ताचीनी होती, एक एक लफ्ज़ पर विवाद होता। एक बार की बात है, कलकत्ते में एक मुशायरा हुआ जिसमें बड़े नामचीन लोग जमा हुए। गालिब ने एक शेर पढ़ा। अब वो शेर फारसी लफ्जों से लबरेज था। अब उस पर खूब बहस हुई, ये इतना मुश्किल शेर है कि मैं फारसी लफ्जों का मतलब ढूंढकर भी इस शेर को समझ नहीं पाया, इसलिए यहां इसका अर्थ नहीं समझा रहा, लेकिन ये प्रसंग बता रहा हूं ताकि आप समझें कि फारसी की वजह से गालिब को किस किस तरह की दुश्वारियां झेलनी पड़ी। तारीख बताती है कि इस शेर पर कलकत्ते में जमकर विवाद हुआ। इस शेर पर आपत्ति करने वाले मौलवी अब्दुल कादिर रामपुरी, मोहम्मद करम हुसैन, विलायती जैसे तमाम उर्दू दां थे। बहस के दौरान उस जमाने के मशहूर फारसी दां कतील के व्याकरण की मिसालें दी गईं, लेकिन गालिब जैसे शायर जो फैजी जैसों को कुछ ना समझते हों, वो कतील को क्या समझते। कहते हैं गालिब ने तुनक कर कहा, कतील कौन? वही फरीदाबाद का खत्री बच्चा, मैं उसे सनद क्यों मानने लगा। बस गालिब का ये कहना था कि हंगामा बरपा हो गया। देखते देखते ये बात मुल्क भर के शायरों में फैली, गालिब के खिलाफ पूरा माहौल तैयार हो गया। कलकत्ता तो कतील का भक्त था, चुनांचे गालिब की शायरी में ढूंढ ढूंढ के खामियां निकाली जाने लगी। लोग राह चलते उन पर फिक्रे कसने लगे। गालिब ने अपने किसी दोस्त को खत लिखा, अगर ये लोग जगह पाते तो मेरी खाल उधेड़ डालते। गालिब को भी लगा कि कहां फंस गए, कलकत्ते आए थे अपने मुकदमे की पैरवी करने और बिला वजह के विवाद में फंस गए। सो अपनी ईरानी सज्जनता दिखाते हुए उन्होंने अपनी फारसी मसनवी बादे मुखालिफ में सफाई पेश की, जिसमें उन्होंने लिखा, खुदा गवाह है मुझे एतराज से खौफ नहीं, सिर्फ ये ख्याल गुजरता है कि मैं चंद रोज के लिए यहाँ कलकत्ते आया, अगर आप लोगों को नाराज कर दूंगा तो आप ही बाद में कहेंगे कि दिल्ली से एक शोक चश्म और बेहया शख्स आया था जिसने बुजुर्गों से बेकार झगड़ा किया। खुदा न करे मैं अपने वतन की बदनामी का बायस हूँ, पर माजरत ख्वाह हूँ और दरख्वास्त करता हूँ कि आप ये वाकया भूल जाएं। तो ये थे गालिब, जो खुद कहते थे कि हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाजे बयां। और हिंदुस्तानी अदब में तीन अजीम साहित्यकार हुए, पहले संस्कृत के कालिदास जिन्हें हिंदुस्तान का शेक्सपियर कहा गया है, दूसरे अवधी के तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस लिखी जो दुनिया की 100 मकबूल महाकाव्य महाग्रंथ में 46वीं जगह पर है, और तीसरे उर्दू फारसी के मिर्जा गालिब जिन्हें दबीरुल मुल्क और नज़्मुद्दौला का खिताब मिला और सारी दुनिया में उन्होंने उर्दू शायरी को एक नए आयाम तक पहुंचाया। तो हाजरीन, आज के लिए आपसे विदा चाहते हैं। आप सुन रहे थे मिर्जा गालिब की फारसी शायरी। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू रेख्ता पॉडकास्ट। इस एपिसोड के राइटर हैं दया शंकर शुक्ल सागर और आवाज दी है रितेश यादव ने। सुनते रहने के लिए इस पॉडकास्ट को फॉलो जरूर करें। ज्यादा मालूमात के लिए विजिट करें www.rekhta.org।